पृष्ठ संख्या 110, गा छायावादोत्तर काव्य यात्रा के सोपान। सन 36 तक आते आते छायावाद का वेग मंद पड़ने लगा। अब तक पंत और निराला का भी छायावाद से मोह भंग हो चुका था, जिसके कारण वह भी प्रगतिवाद की ओर उन्मुख हुए। 1935 ईस्वी में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से हिंदी साहित्य में एक नई विचारधारा का प्रवर्तन हुआ। छायावाद के गर्भ से छायावादोत्तर कविता में जिस काव्य प्रवृत्तियों के बीज अंकुरित हुए वे इस प्रकार हैं। एक प्रगतिवाद 1936 से 1943 ईस्वी, दो प्रयोगवाद 1943 से 1954 ईस्वी, तीन नई कविता 1954 से 1963 ईस्वी, चार अकविता 1963 से अब तक। एक प्रगतिवाद 1936 से 1943 ईस्वी, छायावाद की सूक्ष्म कल्पनायुक्त रहस्यमय दार्शनिकता, वैयक्तिक दुर्बोध और अयथार्थ भावों की प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदी में प्रगतिवाद का जन्म हुआ। पृष्ठ संख्या 111। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने की। इसमें अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रेमचंद ने कहा था, इन्वर्टेड कॉमा, साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं है, बल्कि उनके आगे मशाल लेकर चलने वाली सच्चाई है। इन्वर्टेड कॉमा बंद। छायावाद के कवि यथार्थ की धरती को छोड़कर गगनचारी हो गए, जिसके कारण उनका पतन हुआ, क्योंकि कोई भी देर तक व्योम विचरण नहीं कर सकता। यह कहना कठिन है कि प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया। जिस प्रकार रोमांटिक और रहस्यमय कविता के लिए छायावाद नाम चल निकला, उसी प्रकार मार्क्स की विचारधारा से अनुप्राणित हो प्रगतिवाद शब्द चल पड़ा। यह मात्र 7 वर्षों 1936 से 43 तक ही रहा, किंतु वैचारिक स्तर पर इसने अपना सुदीर्घ प्रभाव छोड़ा। कवि जीवन के यथार्थ धरातल पर उतरकर किसानों, मजदूरों, गरीबों, शोषितों, उपेक्षितों तथा धरती से जुड़े हुए लोगों के सुख दुख की अभिव्यक्ति करने लगे। सामयिक जीवन के प्रति आग्रह, रूढ़ियों के प्रति विरोध, पीड़ितों के प्रति सहानुभूति, नारी के प्रति गहरी संवेदना, सामाजिक कुरीतियों के प्रति विद्रोह आदि का भाव प्रगतिवादी कवियों के काव्य में देखा जा सकता है। ईश्वर, धर्म, जाति, संप्रदाय, नस्ल आदि को छोड़कर यह मनुष्य केंद्रित हो गया। मानवीय समता का स्वप्न मार्क्सवादी दर्शन की आत्मा है, जो यहाँ प्रतिफलित होती हुई दिखाई पड़ती है। प्रगतिवादी कवियों में नरेंद्र शर्मा, शिव मंगल सिंह सुमन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, भगवती चरण वर्मा, रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री आदि प्रमुख हैं। दो प्रयोगवाद 1943 से 1954 ईस्वी। जिस प्रकार छायावाद की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रगतिवाद ने जन्म लिया, उसी प्रकार प्रगतिवाद के विरोध में प्रयोगवाद उठ खड़ा हुआ। प्रगतिवाद में जहाँ सामाजिक दर्शन प्रधान था, वहीं प्रयोगवाद में आकर व्यक्तिवाद प्रमुख हो गया। प्रगतिवाद पर जहाँ मार्क्स का अधिकाधिक प्रभाव है, वहीं प्रयोगवाद पर फ्रायट का। पहली बार प्रयोगवादी शब्द का प्रयोग आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने एक निबंध प्रयोगवादी रचनाएं में किया। यह निबंध तार सप्तक की समीक्षा के फलस्वरूप लिखा गया था। स्वयं आज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में इस शब्द का प्रयोग बार बार किया, जिससे धीरे धीरे यह शब्द इस प्रकार की रचनाओं के लिए रूढ़ हो गया। यद्यपि आज्ञेय ने प्रयोगवाद की संज्ञा को अनचाहे अकारण मथे मढ़ा हुआ जानकर इसका वाद के रूप में खंडन किया, पर यह शब्द तार सप्तक के कवियों की पहचान बन गया। पृष्ठ संख्या 112। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में कवि अज्ञेय के संपादन में हुआ, जिसमें 7 कवियों की रचनाएं संग्रहित थी। वस्तुतः हिंदी में यह बदली हुई चेतना का प्रतीक था। नेमिचंद्र जैन ने जिसकी ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा था कि यूनाइटेड कॉमा, जिस बदलती हुई काव्य चेतना की एक अभिव्यक्ति तार सप्तक के कवियों में मिलती है, वह उस दौर के अन्य बहुत से तरुण कवियों में थी, जिसमें निराला के अतिरिक्त शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन, भवानी प्रसाद मिश्र, राजेश्वर गुरु, केदारनाथ अग्रवाल और नरेंद्र शर्मा तक का उल्लेख किया जा सकता है। हिंदी में प्रगतिवाद तथा प्रयोगवाद के बिलगांव को लेकर भी आलोचकों के मध्य बहुत दिनों तक भ्रम की स्थिति बनी रही। तार सप्तक की श्रृंखला में कुल चार शतक प्रकाशित हुए। इसमें चारों शतकों का संपादन अज्ञेय ने किया था। चार शतक 1943 ईस्वी के कवियों में मुक्तिबोध, नेमचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञेय थे। दूसरा शतक 1951 में 7 वर्षों पश्चात निकला, जिसमें भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती की रचनाएं संग्रहित थी। तीसरा शतक 1959 ईस्वी में पुनः 7 वर्षों पश्चात प्रकाशित हुआ, जिसमें प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं प्रकाशित हुई। अंतिम और चौथा शतक 1979 में प्रकाशित हुआ, जिसमें अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजे, श्रीराम शर्मा और राजेंद्र किशोर की रचनाएं प्रकाशित हुई। तथापि इस शतक को कोई खास प्रसिद्धि नहीं मिली। प्रयोगवाद का संबंध प्रपद्यवाद से भी जोड़ा जाता है, जिसे नरेश मेहता, केशरी कुमार तथा नलिन बिलोचन शर्मा के नाम के प्रथम वर्ण पर नकेनवाद भी कहा जाता है। यद्यपि प्रपद्यवादियों ने कुछ नवीन कर लिखने का दंभ भरा था, प्रयोगवाद के अनुकरण से आगे न निकल सके। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी और डॉक्टर नगेंद्र जैसे आलोचकों ने उनकी कटु आलोचना की। घोर वैयक्तिकता, स्वच्छंदता और अतिशय बौद्धिकता प्रयोगवाद की पहचान बन गए। कवि ने अपने को मुक्त और नवीन होने की घोषणा इस प्रकार की: मैं खड़ा खोले कभी कटिबंध पिंगल के, मुक्त मेरे छंद भाषा मुक्त तर है, मुक्ततम मम भाव पागल के। आगे पृष्ठ संख्या 113। आगे ने प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी करार दिया, यद्यपि कि इन कवियों ने नवीनता के बहुतेरे दम्भ दिखाए, फिर भी पूरी तरह नवीन ना हो सके। आगे चलकर नई कविता के कवियों ने इस पर अपना विरोध दर्ज कराया, फलतः अधिसंख्य प्रयोगवादी कवि नई कविता के खेमे में शामिल हो गए। नई कविता सन 1954 से 1963 ईस्वी। सन 1954 में इलाहाबाद से डॉक्टर जगदीश गुप्त, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजय देव नारायण शाही के त्रय संपादकत्व में नई कविता शीर्षक पत्रिका का प्रकाशन हुआ, जिसने अनेक कवियों, लेखकों एवं चिंतकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस पत्रिका ने हिंदी में एक नए वाद को जन्म दे दिया तथा प्रयोगवाद से अपने को भिन्न बताया। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने लिखा कि सामान्यतया सन 1950 के बाद की कविता को प्रयोगवाद से भिन्न करने के लिए नई कविता नाम दिया गया और यह नाम स्वीकृत भी हो गया। नई कविता के नामकरण का श्रेय अज्ञेय को देते हुए डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा कि नई कविता नाम अज्ञेय का ही दिया हुआ है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का पहले प्रयोग किया था, जो बाद में नए पत्ते के जनवरी फरवरी अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुआ। नई कविता क्या है, इस संदर्भ में छायावादी कवि पंत ने लिखा, यूनाइटेड कामा, नई कविता ने मानव भावना को छायावादी सौंदर्य के धड़कते हुए पालने से बलपूर्वक उठाकर उसे जीवन समुद्र की उत्ताल तरंगों में पेंक भरने को छोड़ दिया, जहां वह साहस के साथ सुख दुख, आशा निराशा के घात प्रतिघातों में बढ़ती हुई युग जीवन की आंधी तूफानों का सामना कर सके। अंतर्वेदक से मुक्त होकर सामाजिक व्यथा के अनुभवों से परिपक्व बन सके। और आगे लिखा कि यूनाइटेड कामा, नई कविता अपनी शैली तथा रूप विधान में जहां अधिक मौलिक वैचित्र्यपूर्ण हो गई है, वहां अपनी भावना में अधिक रागात्मक तथा मानवतावादी बन गई है। यूनाइटेड कामा बंद। पंत के इस कथन से सहमति व्यक्त करते हुए मुक्तिबोध ने अपने प्रसिद्ध निबंध नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध पुस्तक में नई कविता को परिभाषित करते हुए लिखा कि नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की संवेदनात्मक प्रतिक्रिया है। यूनाइटेड कामा बंद। नई कविता की सबसे बड़ी विशेषता लघु मानव की प्रतिष्ठा है। नया कवि छंद की लय की जगह अर्थ की लय की बात करता है। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने लिखा कि कुछ लोगों की धारणा है कि छंदात्मकता अर्थात शब्द की लय कवियों को अतिरिक्त शक्ति प्रदान करती है। कुछ देर तक यह बात सही भी है, पर कविता अपने मूल रूप में अर्थ प्रधान है। यूनाइटेड कॉमा बंद। अतः अब उसके अर्थ की लय की तरफ ध्यान होना चाहिए। पृष्ठ संख्या 114। इसी संदर्भ में डॉक्टर जगदीश गुप्त ने रसानुभूति और सहानुभूति जैसे शास्त्रोक्त प्रश्नों का भी विवेचन किया। उनके अनुसार उसमें रसानुभूति उतनी नहीं जितनी सहानुभूति है। नई कविता पत्रिका के प्रकाशित कुल 8 अंकों में सन 1954 से 67 ईस्वी तक अनेक कवियों की कविताओं का प्रकाशन हुआ। इसमें प्रयोगवाद के भी अधिकांश कवि नई कविता आंदोलन से जुड़ गए। इन कवियों में अज्ञेय, अजीत कुमार, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, गिरिधर गोपाल, जगदीश गुप्त, दुष्यंत कुमार, धर्मवीर भारती, विजय देव नारायण शाही, नरेश मेहता, प्रभाकर माजवे, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, शंभुनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, भारत भूषण अग्रवाल, गजानन माधव मुक्तिबोध, कीर्ति चौधरी, अशोक वाजपेयी, शरद देवड़ा, रविंद्र भ्रमर, राजकमल चौधरी, धूमिल, श्रीकांत जोशी आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक प्रकार से नई कविता प्रयोगवादी कविता का ही एक और नया नाम था। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने 3 खंडों में उस पत्रिका में प्रकाशित रचनाकारों की रचनाओं का पुस्तकाकार प्रकाशन करवाया है। नई कविता ने प्रयोगवाद की आलोचना करके अपनी जमीन तैयार की थी। इन कवियों का यह मानना था कि भाव और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनका अन्वेषण बिल्कुल नया है तथा प्रयोगवादियों के सारे दावे खोखले हैं। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने लिखा कि यूनाइटेड कॉमा नई कविता के द्वारा हिंदी काव्य को वह व्यक्तित्व तो संपन्न दृष्टि मिली जो ईमानदारी के साथ यथार्थ जीवन को उसके सहज रूप में गहराई से देखने की प्रेरणा देती है। यूनाइटेड कॉमा बंद नया कवि भाषा शिल्प के स्तर पर भी लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कर उसमें अर्थ का नया चमत्कार भर देता है। जैसे मन मेरा स्मृति के कब्जे पर कसे हुए खिड़की के पल्ले सा छड़ और दीवार के बीच सर पटक कर रोता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नई कविता के 6ठे और 7वें दशक के बीच अनेक काव्य आंदोलनों का नाम सुनाई पड़ता है जिनका महत्व नारे से अधिक नहीं। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने नई कविता स्वरूप और समस्याएं ग्रंथ में एक लेख नई कविता और किस्म किस्म की कविता में भूखी पीढ़ी, विद्रोही पीढ़ी तथा क्रुद्ध पीढ़ी के अनेक कवियों के काव्य आंदोलनों के नाम गिनाए हैं। जैसे सनातन सूर्योदयी कविता, सीमांत कविता, युयुत्सुवादी कविता, पृष्ठ संख्या 115, अस्वीकृत कविता, अकविता, नूतन कविता, एब्सर्ड कविता, विद्रोही कविता, टटकी कविता, बीट कविता, नंगी कविता, सहज कविता इत्यादि। ये सारे आंदोलन कुकुरमुत्ते की भांति उगे और शीघ्र ही नष्ट हो गए। विद्वानों ने इनकी तीखी आलोचना की। इसमें अकविता के विषय में संक्षिप्त विचार अभीष्ट है। 4. अकविता 1963 से अब तक। सन 1960 ईस्वी के बाद देश की परिस्थितियों में तेजी से बदलाव आया। 62 में चीनी युद्ध के बाद कांग्रेस की नाकामी, भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था, घूसखोरी, अकाल, महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, जनतंत्र के छलावे के साथ अर्थहीन वास्तविकता, उबन, अजनबीपन, असंतोष, कुंठा, विषाद, नैराश्य, अकेलेपन की नियति, दमित यौन वर्जनाओं, सेक्स आदि भावों का अंकन तरुण कवियों ने किया, जिसमें धूमिल सबसे बड़ा नाम है। धूमिल के अतिरिक्त राजकमल चौधरी, श्याम परमार, सौमित्र मोहन, रामदर्श मिश्र, जगदीश चतुर्वेदी, गंगा प्रसाद विमल, कुमार विमल, राजीव सक्सेना, लीलाधर जगूड़ी, मोना गुलाटी, चंद्रकांता देवताले, विनोद कुमार शुक्ल, अरुण कमल, राजेश जोशी, मंडलेश डबराल, सोम ठाकुर, असद जैदी, मणि मधुकर तथा अशोक वाजपेयी आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सन 1963 ईस्वी में जगदीश चतुर्वेदी ने तार सप्तक की तर्ज पर 2 सप्तकों में 14 कवियों की कविताओं का प्रकाशन किया और वक्ताओं की भूमिका में लिखा कि एक कवि उस अभिनव काव्य के नियंता कहे जा सकते हैं जो सहज रूप से विकसित हो रहा है। इस संग्रह में कैलाश वाजपेयी, श्याम परमार तथा राजकमल चौधरी भी सम्मिलित थे। अकविता नाम वस्तुतः यूरोप के एंटी पोएट्री की तर्ज पर रखा गया था। इन कवियों में पूरी तटस्थता के साथ भोगे गए क्षणों की अभिव्यक्ति दी गई। इस अकविता के प्रस्तावकों में कुछ पुरानी पीढ़ी के कवि जैसे गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे तथा भारत भूषण अग्रवाल आदि भी शामिल थे। अकवियों का लक्ष्य बृहत परिवेश में विविध प्रयोगों का दर्शन कराना था। आलोचना नई धारा लहर ज्ञानोदय कल्पना माध्यम आधार उत्कर्ष रूपांबरा काका ग हंस वसुधा विमर्श बहुवचन अकाव्य तथा कविता आदि पत्रिकाओं ने इसके प्रसार में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। अकविता पत्रिका के प्रकाशन से भी अकवियों को बल मिला। अकविता घोर व्यक्तिवाद घोर और बीभत्स यौनवाद के कारण जल्द ही अपनी घृणास्पद स्थिति में समाप्त हो गई। सतीश जमाली जिन्होंने पृष्ठ संख्या 116 अकवि पत्रिका का संपादन किया के कविता संग्रह एक और नंगा आदमी राजकमल चौधरी की मुक्ति प्रसंग और कंकावती आदि संग्रहों में कविता की सारी हदें टूट गई और इंसान के भीतर का विभत्स नंगापन खुलकर सामने आया। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि इन्वर्टेड कॉमा उन्हें मुक्ति प्रसंग और कंकावती में वेश्या बीमार शहर सड़े गोश्तों वाली औरतों के साथ संभोग के विभत्स चित्र हैं। कैलाश वाजपेयी यज्ञ और वेश्या में कोई फर्क नहीं मानते। जगदीश चतुर्वेदी इतिहास हंता हो गए। सौमित्र मोहन का लुकमान अली एक तिहाई प्रगतिवादी और दो तिहाई आधुनिकतावादी है। इन्वर्टेड कॉमा बंद इनकी कविता की नग्नता को देखकर रीत युग की कविता ने भी शर्म से अपना मुंह छुपा लिया। अराजक अभिव्यक्ति की धुन में यथार्थ के नाम पर सभी प्रकार के मूल्य और मर्यादाओं का अतिक्रमण करते हुए इन कवियों ने कविता को नरकवास दे दिया। वह कविता जो सिद्धों और नाथों के हृदय में पैदा हुई थी और मध्ययुगीन संतों की परवरिश में बड़ी होकर रीतिकालीन में अपने यौवन के इंद्रजाल से सबको सम्मोहित करने की क्षमता रखती थी, वही आधुनिक काल की यात्रा तय करते हुए इन कवियों के काव्य में आकर विभत्स कुरुचिपूर्ण अनुदात्त और अनुभंगित तुच्छ संवेदनाओं की संवाहिका मात्र रह गई। इस प्रकार हम पाते हैं कि 8वें दशक की कविता में धूमिल की लोकप्रियता को कोई कवि प्राप्त न कर सका। यद्यपि कि वह राजकमल चौधरी से प्रभावित हैं, फिर भी धूमिल में कविता तथा समाज के सरोकारों एवं मूल्यों का विस्थापन उस रूप में नहीं है जिस रूप में राजकमल चौधरी में मिलता है। धूमिल कविता में नई भाषा और नया मुहावरा गढ़ते हैं। उनकी कविता में आधुनिकता और अराजक का मोहक संतुलन है। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र इसके गवाह हैं। आज वर्तमान हिंदी का भविष्य काव्य और आदर्श जीवन मूल्यों के तेजी से क्षरण के कारण अपने वास्तविक पथ से च्युत जान पड़ता है। उसका आलोक निस्तेज और कुंद हो गया है। इधर कुछ अच्छे नवगीतकारों ने एक नई उम्मीद बंधाई है। राकेश कुमार द्विवेदी।